देहादिभिर् देवतंत्रेर आत्मना सुखमीहद दुखात्यम चानीशस्य क्रियामोघा कृताकृता देहादिभिर् देवतंत्रेर आत्मना सुखमीहत दुखात्यम चानिशस्य क्रियामोघा कृताकृता. प्लीज रिपीट. देवतंत्र देवतंत्र आत्मना सुखीयत दुखाद्यं चानिशस्य क्रियामोघा कृताकृता देहादिभिर्देवतंत्रेर आत्मना सुखमीहत दुखात्यं चानिशस्य क्रियामोघा कृताकृता. माताजी देहादिभिर्देवतंत्रे दुखात्यं सुखदीयत दुखात्यं चानिशस्य क्रियामोघा कृताकृता. शब्दार्थ देहादिभि शरीर मन अहंकार तथा बुद्धि से दैवतत्व परम शक्ति के अधीन आत्मनः आत्मा का सुखम सुख यहत खोज करते हुए दुखात्ययम् दुखों की कमी च भी अनिशस्य भौतिक प्रकृति के पूर्णतया अधीन जीव क्रिया कार्यकलाप तथा योजनाएं मोघ कृताकृता पुनः पुनः व्यर्थ हो जाती है. अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा. श्रील प्रभुपाद की जय. जीव सुख प्राप्त करना चाहता है और दुख के कारणों से छूटना चाहता है, लेकिन चूंकि जीवों के शरीर प्रकृति के पूर्ण नियंत्रण में होते हैं, अतः वह जीव एक के बाद एक विभिन्न शरीरों को पाकर जितनी भी योजनाएं बनाता है वे अंतोगत्वा निष्फल हो जाती है. तात्पर्य चूंकि भौतिकवादी व्यक्ति इस घोर अंधकार में रहता है कि प्रकृति के नियम किस प्रकार उसके कर्मों के अनुसार उस पर प्रभाव डालते हैं, अतः वह भूल करके आर्थिक विकास के उच्च लोकों में जाने के उद्देश्य से पुण्य कर्म द्वारा तथा अन्य विधियों से मनुष्य जीवन में शारीरिक सुपास भोगने की योजनाएं बनाता है, किंतु वास्तव में यह अपने कर्म फलों का शिकार बनता है. पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सभी जीव के अंत फल में परमात्मा रूप में स्थित है. जैसे कि भगवद गीता 15:15 में भगवान कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि संविष्टो मत स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च. मैं सबों के हृदय में स्थित हूँ और मुझी से स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति आती है। जीव की इच्छा तथा कार्यकलाप परमात्मा द्वारा देखे जाते हैं, क्योंकि वे उपदृष्टा है और वे जीव की विविध इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रकृति को आदेश देते हैं। जैसे कि भगवद गीता 18:61 में स्पष्ट कहा गया है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयस्थे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मयन सर्वभूतानि यंत्र आरूढानि मायाया। भगवान सबों के हृदय में आसीन रहते हैं और जैसा चाहता है उसी अनुसार भगवान उसे विविध प्रकार के शरीर प्रदान करते हैं, जो यंत्रों के समान है। जीव ऐसे यंत्र पर आरूढ़ होकर प्रकृति तथा उसके गुणों के वशीभूत रहकर ब्रह्मांड भर में घूमता है। इसी तरह जीव कर्म करने के लिए भी स्वतंत्र नहीं है, अपितु भौतिक प्रकृति के पूर्णतया अधीन रहता है और वह भौतिक प्रकृति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पूर्ण नियंत्रण में रहती है। ज्यों ही जीव भौतिक इच्छाओं द्वारा प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए प्रताड़ित किया जाता है, त्यों ही उस पर प्रकृति का नियंत्रण हो जाता है, जिसका अधीक्षण परमात्मा द्वारा होता है। इसका परिणाम यह होता है कि मनुष्य बारंबार योजनाएं बनाता है और निराश होता रहता है। किंतु मूर्ख होने के कारण यह निराशा का कारण नहीं समझ पाता। इस कारण का स्पष्ट उल्लेख भगवद गीता में हुआ है, देवी ही ऐसा गुण माया मम माया दुरतया। क्योंकि मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण नहीं करता, अतः वह उसे भौतिक प्रकृति तथा उसके कठोर नियमों के अंतर्गत कार्य करना होता है। इस बंधन से छूटने का एकमात्र उपाय परमेश्वर की शरण ग्रहण करना है। मनुष्य जीवन में जीव को यह उपदेश परम पुरुष परम कृष्ण से ग्रहण करना चाहिए। सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तुम सुख प्राप्त करने और दुख भगाने की योजना मत बनाओ, तुम इसमें कभी सफल नहीं होगे। तुम केवल मेरी शरण में आओ। किंतु दुर्भाग्यवश यह भगवद गीता में स्पष्ट रूप में दिए गए परमेश्वर के इस आदेश को स्वीकार नहीं करता। इस तरह मनुष्य भौतिक प्रकृति के नियमों का नित्य बंदी बन जाता है। यज्ञ अर्थ कर्मण अन्यत्र लोक अर्थ कर्म बंधन। यदि मनुष्य विष्णु का यह यज्ञ नाम से विख्यात कृष्ण की तृष्टि के लिए कर्म नहीं करता तो वह कर्म फलों के बंधन में फंस जाएगा। ये बंधन पाप तथा पुण्य कहलाते हैं। पुण्य कर्मों से मनुष्य उच्च लोगों को जाता है और पाप कर्मों से अधम जीवनियों को प्राप्त होता है, जिनमें वह प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित किया जाता है। जीवन की अधम योनियों में विकास प्रक्रम पाया जाता है और जब इन योनियों में जीव के बंधन या दंड की अवधि समाप्त हो जाती है तो उसे पुनः मनुष्य जीवन प्रदान किया जाता है और इसका अवसर दिया जाता है कि वह किस तरह योजना बनाए। यदि वह अवसर को पुनः खो देता है तो उसे जन्म मृत्यु के चक्कर में पुनः डाल दिया जाता है और संसार चक्र में कभी वह नीचे जाता है तो कभी ऊपर जाता है। जिस प्रकार चक्र पहिया कभी नीचे तो कभी ऊपर जाता है, उसी प्रकार प्रकृति के कठोर नियम जीव को कभी सुखी बनाते हैं तो कभी दुखी। सुख दुख के चक्र में वह जिस प्रकार कष्ट उठाता है उसका वर्णन अगले श्लोक में हुआ है। ओम अज्ञान तिमिरां दश्य ज्ञानंजन शलाघय चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवै नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानु सुत देवी ब्रह्मा में हरे ब्रे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तों। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अमो विष्णु बदाय कृष्ण मिश्राय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी ते नाम नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी बचाने निर्विशेषादि भगवान। हरे कृष्णा। तो पिछले कई श्लोकों से हम देख रहे कि किस तरह से प्रहलाद महाराज संतों का जीवन देखने गए हैं और वो संत कैसे रहते हैं, उनका जीवन कैसा होता है, किस तरह से गुजार रहे हैं। तो उसी इच्छा से वो गुजरे निकले थे कि उन्होंने उन संतों के द्वारा एक संत जो मिले जो अजगर की तरह रहते थे, पड़े रहते थे, जो चीज अपने आप से आए उससे संतुष्ट रहते थे। तो उन्होंने फिर उनसे पूछा कि आप जरूर कोई महान आत्मा है तो कुछ हमें निर्देश दीजिए। तो उसी को लेके वे पिछले कई श्लोकों से ये चर्चा हो रही है कि किस तरह से जो जीव है इस जगत में फंसा हुआ है अनेक कारणों से। तो जो आज का श्लोक है इसमें श्रील प्रभुपाद जी विशेष तरह से कहना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि जो जीव अनेक प्लानिंग करते रहता है। हमने देखा इस जगत में लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम पे पूरे विश्व में आजकल चल रहा है कि कैसे प्रगति की जाए। तो जो व्यक्ति है वो अपनी मुश्किलों को हल करने के लिए कुछ कुछ प्रयास करते रहते हैं, कुछ सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। गर्मी लग रही है तो एसी ढूंढ के निकाला ताकि हमें गर्मी ना लगे, और फिर ठंडी लगे तो हीटर ढूंढ के निकाला ताकि ठंड ना लगे। ऐसे अनेक प्रकार के डेवलपमेंट्स लोग कर रहे हैं, नए नए इन्वेंशन। और सोच रहे हम इस मुश्किल से हम निकल जाए, एक मुश्किल से निकल जाते हैं दूसरे में अटक जाते हैं। हम अपना पूरा जीवन अगर देखें बचपन से लेके, या हमारे माता पिता या हमारे पूर्वज या अनेक जन्मों से चला आ रहा है, तो कोई व्यक्ति इसे समझ नहीं पाता कि क्या पता पिछला जन्म था या नहीं, किसको मालूम। यही एक लाइफ मिली है तो हम इसी में आनंद कर लें, और इस आनंद की खोज में वो अनेक प्रयास कर रहा है। अनेक एक कपड़ा पहना फिर सोचता है इससे इसमें आनंद नहीं, कुछ और दूसरा कपड़ा पहन ले उसमें आनंद आएगा। और पूरे आप चारों तरफ देखें इसी का प्रोपोगंडा चल रहा है। आप जहां जाओ लोग आपको बोल रहे ये ले लो आप खुश हो जाओगे, और ये फोटोग्राफ और ये मीडिया और ये एडवर्टाइज ऐसे बनाए गए कि जो व्यक्ति एडवर्टाइज करता है हंसते हुए एडवर्टाइज करता है और दिखाता है कि मैंने ये ले लिया मैं खुश हूं, आप भी खुश हो जाओगे। हमने टेलीफोन से लेके आईफोन तक यूज कर लिया लेकिन लोग खुश नहीं है। वो सोच रहे अभी i7 ले ले, i8 ले, 2G से लेके 4G तक आ गए फिर भी हम संतुष्ट नहीं है। लेकिन ये सब बेवकूफ बनाने का धंधे चल रहे हमें कि जीव को कैसे मूर्ख बना रही है माया, और जीव इसी में फंसा चला रहा है। वो सोच रहा है 2G से खुश हो जाऊंगा, फिर सोचता है 3G से खुश हो जाऊंगा, फिर सोचता है 4G से खुश हो जाऊंगा। लेकिन ये उसे ज्ञान होता ही नहीं कि 2G से मैं खुश नहीं हुआ तो भी 3G से कैसे होगा। जब मैं नॉर्मल टेलीफोन से खुश नहीं हुआ तो भी मोबाइल फोन स्मार्टफोन, लोग स्मार्ट नहीं बन रहे लेकिन फोन स्मार्ट यूज कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने यहां हमें बहुत अच्छे स्मार्ट बनने का ज्ञान दिया हुआ है कि आप फोन स्मार्ट मत यूज कीजिए, आप खुद स्मार्ट बने। नहीं तो लोग हमें बेवकूफ बनाने पे लगे हुए हैं, चारों तरफ से प्रोपोगंडा। आप घर से बाहर निकलो आपको बड़े बड़े होर्डिंग मिलेंगे, न्यूज मिलेगा, या कहीं पे मीडिया चैनल देखो कहीं से भी आपको प्रोवोकेशन होते रहेगा चारों तरफ से, और दिमाग में घुसेड़ दिया जाएगा कि आप इससे खुश हो गए। एक बार मैं हावड़ा स्टेशन पे जा रहा था तो मैंने एक बहुत बड़ा होर्डिंग देखा, तो उसमें होर्डिंग देखते ही बहुत हंसी आ गई मुझे। मेरे साथ सुंदर चैतन्य प्रभु भी थे, उनका भी ध्यान गया उस होर्डिंग की तरफ। तो उस होर्डिंग में दिखाया कि एक व्यक्ति काफी फ्रैक्चर की हालत में है, उसकी टांग बिंग टूटी फिर भी स्माइल दे रहा है। वो एडवर्टाइज था कि इस हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ आप स्माइल करोगे। तो ये कैसा स्माइल है कि टांग टूटी है फिर स्माइल हो रही है? तो हॉस्पिटल में एडमिट होने से आदमी खुश हो जाता है और अपना दर्द भूल जाता है। तो यहाँ प्रभुपाद जी यही बता रहे कि हम अनेक प्लान बनाते रहते हैं, और हम माना कि हम नहीं मानते हैं पुनर्जन्म में, नहीं मानते हम, अगले जन्म में भी हम नहीं माने, लेकिन इतनी तो सोच होनी चाहिए कि पूरी आसपास हम देख रहे हैं हमारा पूरा खानदान इसमें विफल हो गया, सभी लोग फेल हो गए, दादा से परदादा, पिताजी, बाजू वाला, बाजू वाली, चाचा चाची, सभी लोग इसमें फेल हो गए। ये तो हमें बुद्धि लगा सकते हैं, सभी लोग ट्राई कर रहे हैं सेटल होने का, लेकिन आज तक तो कोई सेटल हुआ नहीं। सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, पूरा विश्व प्रयास कर रहा है सेटल हो जाने का, फिर भी हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही और ये माया के चक्कर में हम जा रहे हैं। हम सोच रहे हम इससे खुश हो जाएंगे, कई बार भक्ति में आके भी बुद्धि ऐसा कार्य कर रही है। कई बार हम सोचते मैं सोचता हूं कि मैं इस डिपार्टमेंट में सेट हो जाऊंगा, इस मंदिर में सेट हो जाऊंगा, या मन यहां लगेगा या वहां लगेगा, क्योंकि कृष्ण भक्ति छोड़ के मन कहीं अनेक जगहों पर लगा हुआ है और हम प्रयास कर रहे कि हम खुश हो जाएंगे यहां पर, जबकि श्री भगवान ने इसे कह दिया है कि जगत दुखालयम है। जैसे किसी कंपनी ने कोई प्रोडक्ट बनाया और वो प्रोडक्ट को कह रहा है कि प्रोडक्ट सबसे बकवास है, खराब है, फिर भी लोग लाइन लगाए हुए उसे खरीदने के लिए, तो इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी? जो प्रोडक्ट खराब है और उसी के पीछे हम लाइन लगाए हैं खरीदने के लिए। तो इस प्रकार पूरे संसार में जो चल रहा है डेवलपमेंट, कोई भी शहर में लोग कैसीनो क्लब खोल रहे हैं, ब्रिजेस बना रहे हैं, सोच रहे इससे मुंबई शहर का प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा, एक ब्रिज के बाद दूसरा ब्रिज, तीसरा ब्रिज, लोकल ट्रेन के बाद मेट्रो ट्रेन या अनेक फ्लाइट। तो जितने सुविधाएं बढ़ रही उतने प्रॉब्लम्स भी बढ़ रहे हैं, उसका कोई अंत नहीं हुआ आज तक। और अनेक लोगों ने इस भौतिक प्रकृति को भोग करने की प्रयास किए हैं। 12वें स्कंद में खुद पृथ्वी माता इसे कहती है कि अनेक लोग आए मुझ पर राज किए, अनेक लोगों ने मुझे भोगना चाहा, लेकिन आज तक कोई नहीं भोग पाया, कुछ समय रहते चले जाते हैं, क्योंकि असली इसका मालिक तो श्री भगवान है, ये लोग भूल जाते हैं और हम इसका मालिक बनने का प्रयास कर रहे हैं। और जितनी बार हम खुद भोगना चाहेंगे वो होगा नहीं, क्योंकि असली इसका भोक्ता भगवान श्री कृष्ण है, जो उन्होंने गीता में कहा भोक्ता राम यज्ञ तपस्या, मैं असली भोक्ता हूं। तो जो जीव है इन चीजों के पीछे दौड़ रहा है और सोच रहा मैं इसके बाद खुश हो जाऊंगा, उसके बाद खुश हो जाऊंगा, बचपन से लेकर सोचता है कि मैं अगर 10वीं पास कर लूंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, फिर सोचता मैं बोर्ड पास कर लूंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, फिर सोचता मैं इंजीनियरिंग डॉक्टरी कर लूंगा तो खुश हो जाऊंगा, लेकिन आज तक वो ये नहीं सोचता कि ऑलरेडी बहुत लोग ये कर चुके, क्या वो खुश है क्या नहीं। क्योंकि जब भी हम कुछ कहते हैं किसी को तो लोग पहले सोचते कि किसी और ने जब किया होगा तो फिर उस पर विश्वास आता है। कोई चीज आप जब नहीं करने जाते हो तो आपको थोड़ी सी ये होता है कि होगा कि नहीं, ये बस जारी होगी कि नहीं, ये ट्रेन पहुंचाएगी कि नहीं, लेकिन जब आध्यात्मिकता या भौतिक जीवन की बात आती है तो लोग सोचते हैं कि सभी लोग कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, इसको लोग नेचुरल कहते हैं कि ये नेचुरल है, और जो भक्ति है अननेचुरल है। कई बार लोग सोचते हैं, लेकिन लोग ये नहीं सोच रहे कि सभी लोग इसको कर रहे हैं, कहीं जमाने से लेकिन कोई आज तक सफल हुआ नहीं है, तो मैं कैसे होगा सफल। कई बार हम यात्रा करते हैं तो कई लोग इसको पूछते हैं, इस प्रश्न को, वो सोचते कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो पूछते स्वामी जी आप क्या करते हैं, तो हम बोलते हम तो कुछ करते नहीं, बस प्रचार करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। तो फिर पूछते कि आपका मेंटेनेंस कैसे होता है, आप कैसे खाते पीते हैं, मतलब तो आ जाता है धन, तो उन्हें विश्वास नहीं हो पाता। वो सोचते कि हम इतना मेहनत करके बाद में भी मुश्किल से थोड़े पैसे मिलते हैं, और ये लोग तो सिर्फ भजन कर रहे हैं और इन्हें कुछ करना नहीं, और इनका मेंटेनेंस कैसे चल रहा है, तो उन्हें विश्वास नहीं होता। तो वो सोचते मेहनत करके ही मेंटेनेंस हो सकता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी बता रहे यहाँ पे लोग गधे जैसी मेहनत करते रहते हैं और अपने इस मनुष्य जीवन को नष्ट करते हैं, और उसमें से कुछ लोग अगर छोड़ के भजन करना चाहे तो ये लोग ऑब्जेक्शन उठाएंगे कि नहीं करना है, और फिर ऐसे लोगों को दूसरे लोग अपने दूसरे प्रलोभन द्वारा इनका ध्यान हटा देते हैं, भक्ति से मन वापस भोग की तरफ ले जाने का प्रयास करते हैं। एक बार की बात है कि एक धोबी था, उसके पास एक गधा था, तो उस गधे से रोज वो कपड़ा उठवा के धोबी घाट ले जाता था। तो धोबी गधे ने सोचा बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग, आज थोड़ा स्ट्राइक कर लेते हैं, आज हम मेहनत नहीं करूंगा, मैं आज नहीं उठाऊंगा। तो उसने हड़ताल कर दी, बोला आज मैं नहीं जाऊंगा। धोबी ने बहुत प्रयास किया लेकिन गधा बोला मैं नहीं जाऊंगा, बस हिल ही नहीं रहा। तो धोबी ने बोला ठीक है आइडिया कुछ लगाते हैं। तो उसने क्या किया, उस गधे के आगे गाजर बांध दिया सर से थोड़ा आगे, मुंह के सामने गाजर। तो गधे को लगा रहे गाजर चलो इसको खा लेते हैं। तो सोचा थोड़ा आगे जाऊंगा तो गाजर मेरे मुंह में आ जाएगा, तो इसलिए वो थोड़ा आगे चला तो गाजर भी आगे गया, क्योंकि उसने सर पे बांधा था। जैसे वो चल रहा था वैसे गाजर आगे आगे जा रहा था। तो धोबी ने अपने कपड़े उसके ऊपर रख दिए थे, तो गधा गाजर खाने के चक्कर में चलते चलते गया और धोबी घाट पहुंच गया। तो उसी प्रकार जीव जीवन भर मेहनत करता है, सोचता अभी सोल हो जाएगा, इसके बाद सोल हो जाएगा, बस बच्चा बड़ा हो जाए फिर हम गंगा नहाएंगे, लेकिन बड़ा होने के बाद नया प्रॉब्लम हो जाता है। और ऐसे ही गाजर के चक्कर में जैसे गधा धोबी घाट पहुंचता है, वैसे व्यक्ति शमशान घाट पहुंच जाता है और उसे पता ही नहीं चलता, उसका पूरा जीवन उस गाजर के चक्कर में निकल जाता है। वो सोचता अभी खुश हो जाएंगे, अब खुश हो जाएंगे, इसके बाद प्लान के बाद प्लान। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते कि माया इतनी शक्तिशाली भगवान की कि आपके सारे प्लान फेल कर देंगे, आप चाहे कितने भी प्लान बनाओ, सारे प्लान निश्चित है कि फेल हो गए, क्योंकि यहाँ पे कोई प्लान चलने वाला नहीं है, क्योंकि भगवान ने पहले ही इसे घोषित कर दिया है दुखालयम अशाश्वतम। कई बार होता है कि कुछ व्यक्ति, एक बार मेरे कुछ मित्र प्लान किए कि चलो हम लोग चलते घूमने न्यूजीलैंड चलते हैं, तो लोग सोचते कि मैं यहाँ जाऊंगा तो खुश हो जाऊंगा और वहां जाऊंगा तो खुश हो जाऊंगा। कई बार लोग प्लान करते हैं एंजॉय करने के लिए, तो न्यूजीलैंड गए, फिर वहां जाके एक दो दिन घूमे, बोले यार इससे अच्छा ऑस्ट्रेलिया जाना ज्यादा अच्छा होता था, न्यूजीलैंड में इतना आनंद नहीं आ रहा है। तो आप कहीं जाओगे आपको लगेगा ये अच्छा वो अच्छा, तो जीवन में जितनी चॉइसेस हो गए, जितने ऑप्शंस हो गए हमारे पास ज्यादा से ज्यादा, उतनी हमारे लिए मुश्किल बढ़ेगी। अगर आपके पास 10 जोड़ी कपड़े है तो आपको मुश्किल है सिलेक्ट करना, और उसमें भी कुछ लोग तो 100 जोड़ी रखते हैं, कौन सा पहनना कौन सा क्या करना, तो जितना चॉइस कम होगा। तो इस जो डेवलपमेंट के चक्कर में क्या हो रहा है कि हमारे पास ऑप्शंस बढ़ रहे हैं इंद्रिय तृप्ति के, और इन ऑप्शंस बढ़ने के कारण हमारा जीवन इसी में लगा है कि कौन सा ऑप्शन मेरे लिए अच्छा होगा, ये ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी, और इसी में हम सारे ऑप्शन ट्राई करते करते जीवन हमारा बीत रहा है और इसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, क्योंकि भौतिक जगत का चक्कर ही ऐसा है। उसी प्रकार जैसे प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बताते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति मेले में जाए, मेला गांव में मेला लगता है, तो वहां जाके आपके पास चॉइस होती है कि आपको क्या देखना है, सर्कस देखना है, कौन से मशीन पे बैठना है, कौन से फेयरवेल में बैठना है, फेरीवेल और किस में बैठना है आपको, तो आप पैसा दो उस मशीन में आपको बिठा के गोल गोल घुमा देंगे। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी उस लेक्चर में बता रहे हैं, उसी प्रकार जीव अपनी इच्छाओं के द्वारा अनेक योनियां प्राप्त कर रहा है। जैसे जैसे अपनी इच्छाएं बनाता है वैसे अनेक योनियां प्राप्त होती है। यंत्र अरुणिना माया, यहाँ पे श्लोक कोट करे प्रभुपाद जी भगवद गीता से 18वें अध्याय का, कि जीव अपने इच्छा से अनेक मशीनों पे घूम रहा है और सोच रहा है इस मशीन पे ज्यादा आनंद आएगा या उस मशीन, जैसे हम i1 से लेकर i7 तक मोबाइल यूज करके हम सोचते हैं कि इस चीज में आनंद आएगा। तो इसी प्रकार जीव अनेक योनियां घूम रहा है इसी चक्कर में कि इससे खुशी होगी उससे खुशी होगी, लेकिन वो भूल जाता है कि ये जो चॉइस लेने के बाद वो कर्म के बंधन में फंस रहा है, उसे पता ही नहीं चल रहा है कि वो फंस रहा है। उसे लग रहा है कि मैं अभी आनंद प्राप्त कर लूंगा, अभी आनंद प्राप्त कर लूंगा, लेकिन वो भूल जाता है कि इन कर्मों के चक्कर से कारण वो अनेक योनियों को प्राप्त कर रहा है और बार बार यही फंस रहा है एक मशीन से लेके दूसरे मशीन पर। तो इसके पर तीसरे अध्याय में कपिल भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच कर्म न देव नेत्रे न जंतुर्देहोपपते स्त्रिया प्रविष्टा उदरम पुंसो रेत कामाश्रया। स्वयं भगवान कह रहे कर्म न देव नेत्रे न, ये जो कर्म है उसके कारण ये जो जंतुर है, जंतुर जीव यानी देह प्राप्त कर रहा है और इन्हीं कर्मों के कारण वो स्त्री के उदर में बार बार जन्म ले रहा है। तो इसलिए ये जो डेवलपमेंट के प्लानिंग है ये हमको और कुछ प्राप्त नहीं करवाएंगे। टेम्पररी आपको लगेगा मैं एसी में बैठा हूं ठंडा लग रहा है, लेकिन इससे आप बाहर की गर्मी कम नहीं कर सकते हो। आपको लगेगा टेम्पररी, लेकिन आप पूरे जीवन भर एसी में बैठ नहीं सकते, आपको घर से बाहर जाना ही पड़ेगा और फिर वो गर्मी लगेगी। आप कितनी ट्रेन बस प्लेन निकाल दो, कोई सोचता मैं जनरल से स्लीपर क्लास में जाना चाहिए, तो स्लीपर क्लास वाला सोचता मैं थर्ड क्लास एसी में जाना चाहिए, और थर्ड क्लास वाला सोचता सेकंड क्लास। ऐसे कोई भी प्रश्न नहीं है, आप फर्स्ट क्लास से लेकर जनरल क्लास तक तीनों क्लास में जाके बैठो कोई प्रश्न नहीं है। सभी लोगों के अपने अपने प्रॉब्लम है, कई बार एसी क्लास का एसी बंद हो जाता है तो लोग झगड़ते रहते हैं कि भाई एसी चालू कराओ, और आपको वहां पे भी सामान चोरी हो जाता है, एंग्जाइटी होती है कई प्रकार की, और चाय बेचने वाले आके आपके नींद डिस्टर्ब करते हैं, सवेरे आएंगे। आप किसी क्लास में सफर कर लो जो शरीर का कष्ट है वो तो होगा ही, आप किसी में कंफर्टेबल ना हो। कोई बोले ट्रेन नहीं प्लेन में चलते हैं, तो प्लेन में भी उतना ही एंग्जाइटी है, उसमें उतना ही आवाज है। तो इसलिए किसी भी प्रकार से मन प्रसन्न नहीं होगा, हम एक बॉक्स से निकल के दूसरे बॉक्स में बैठना चाहेंगे या एक परिस्थिति से दूसरे परिस्थिति में जाना चाहेंगे तो उससे प्रसन्नता नहीं होगी। प्रभुपाद जी बोलते पूरे ब्रह्मांड में भी अगर जीव घूम के आएगा फिर भी उसे संतुष्टि नहीं होगी। आ ब्रह्म भूमंडलों का पुनरावृत्ति नो अर्जुना, गीता में भगवान बताते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में आप कहीं जाओ आपको वहां से रिटर्न टिकट है, कहीं परमानेंट स्टे नहीं है आपका। तो जब परमानेंट स्टे नहीं है तो वहां डेवलपमेंट करके क्या फायदा। ये उसी प्रकार का है कि आप कहीं पे पिकनिक गए हो एक हफ्ते के लिए और वहां पे सोच रहे हो कि मैं अपना बंगला बना लूं, एक रोड बना दूं, एक ब्रिज बना दूं, ऐसे कितने लोग सोचते हैं। एक हफ्ते के लिए जाना है कौन मगजमारी करेगा, सोचते कि कम से कम कपड़ा लेके जाए और वापस आ जाए। तो जब यहाँ भौतिक प्लान में बुद्धि लगाई जा सकती है तो इसे अपने जीवन के प्लानिंग में भी बुद्धि लगानी चाहिए। व्यक्ति को सोचना चाहिए कि यहाँ पे शुरुआत जीरो है और अंत भी जीरो है, आप कितना ही डेवलपमेंट कर दो, एक ना एक दिन चीजें खत्म होने वाली हैं। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में कहते हैं कि कोई व्यक्ति 100 माले की बिल्डिंग बना रहा है, पूरी 100 फ्लोर की बिल्डिंग बनाता है, मेहनत करता है और बिल्डिंग बन जाती है पूरी, और कोई उसे पूछे कि आपने 100 फ्लोर का बिल्डिंग बनाया, अब आप क्या करने वाले इसका, तो कहे कि मैं इसको आग लगा दूंगा। तो प्रभुपाद जी बोलते ये तो बेवकूफी है, पूरा मेहनत किया, 100 माले की बिल्डिंग बनाई और अब आग लगा रहे हो। तो उसी प्रकार जीवन है, पूरे जीवन हम गधा मजदूरी करें और अंत में कोई हमारा घर वाला हमको आग लगा दे। तो ये प्रभुपाद जी बताते हैं, तो इससे सावधान होना चाहिए कि आप पूरे जीवन भर गधा मजदूरी किए, बोझा उठाए, और क्या हुआ अंत में किसी ने आपका शरीर को आग लगा दी, तो उस प्राप्ति का क्या फायदा कि जो अंत में आपको किसी को दे देना है। आप पूरा महीना मेहनत करो, सैलरी कमाओ और महीने के अंत में कोई स्माइल देके आपके जेब से निकाल लें, तो कोई सेंस नहीं बनता। तो इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि उस जीवन को कोई मतलब नहीं है, कि आप अनेक प्लानिंग कर रहे हैं और माया देवी उसे बार बार विफल कर रही है, तो उससे कुछ होगा नहीं और इन कर्मों के बंधन से हम कभी निकल नहीं पाएंगे, हम इसमें फंसते फंसते जाएंगे, क्योंकि जो माया है बड़ी स्ट्रांग है। जो और एक श्लोक जो प्रभुपाद जी यहाँ कोट कर रहे हैं, देवी ऐसा ही गुण माया मम माया दुरत्तया, कि ये जो माया है बड़ी स्ट्रांग है, इसको निकलने के लिए एक ही रास्ता है, अपना प्रयास नहीं करना है, ना सुख के लिए ना दुख के लिए, सिर्फ एक ही कार्य करना है अगर इसे बचना है। श्री भगवान बता रहे कि मेरी शरण में आओ, तो जो व्यक्ति भगवान की शरण में जाते हैं वो इन माया से बच सकते हैं, ये सारे प्रलोभन से बच सकते हैं। तो हमारे श्रील प्रभुपाद ने ये बहुत अच्छी एक मूवमेंट बनाई है, जहाँ पे हमें पूरा मौका मिल रहा है कि इन माया से कैसे बचे। अगर हम सवेरे की शुरुआत से रात तक के प्रोग्राम्स प्रभुपाद ने इतने अच्छी तरह से बनाए कि सवेरे दर्शन भगवान का, ताकि बाहर के किसी दर्शन से हम बच सके, तो रोज जो राधा रास बिहारी जी के दर्शन करेगा और दूसरे दर्शन से अपने आप बच जाएगा। और यहाँ पे और कोई प्रलोभन नहीं है, सबसे बड़े प्रलोभन है हमारे सुंदर श्री श्री राधा रास बिहारी। तो प्रभुपाद जी की कृपा से ये आसान है। जब भी लोग भक्ति में आते हैं उससे पहले अनेक संशय होते हैं मन में कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, भजन क्या होगा, मेरे से होगा नहीं, मैं बहुत बड़ा ये हूँ वो हूँ, फॉलन हूँ पतित हूँ, ऐसे अनेक प्रश्न मन में आते हैं कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, बड़ा मुश्किल है। लेकिन हमने देखा है अभ्यास करके कि बहुत सरल हो जाता है। प्रभुपाद जी ने इतना अच्छा मूवमेंट बनाया। एक भक्त मुझे बता रहा था कि वो जब भक्ति में आया तो उसने सोचा कि मेरे से तो ये होगा नहीं ज्यादा, तो मैं सिर्फ 1-2 साल करूंगा और फिर अपना वही गधा जीवन करूंगा। तो सोचा मैं 1-2 साल के लिए भक्ति कर लेता हूं। तो प्रभुपाद की पुस्तकों द्वारा बहुत प्रेरित हो गया था, तो सोचा 1-2 साल कर लेता हूं। लेकिन जब वो भजन में लगा तो आज भी 10-12 साल हो गया और कंटिन्यू कर रहा है। मैंने उनको पूछा है कैसे हो गया, बोला मुझे पता ही नहीं चला कब 10 साल निकल गए, जबकि योजना थी सिर्फ 2 साल भजन करने की, लेकिन 10-12 साल निकल गए, क्योंकि प्रभुपाद ने इतना अच्छा ट्रिक बनाया कि आप यहाँ से जाना ही नहीं चाहते हो, भागोगे भाग ही नहीं सकते हो, सर में इतने जिम्मेदारी कोई पकड़ ले प्रभु इधर आओ ये करो, प्रभु जी ये कर लो वो कर लो, और उसी में ऐसे लगता है ये करके भागो वो करके भागो, लेकिन लगे रहोगे, 1 माला से शुरू करो 16 माला तक आते रहोगे। और कभी ऐसा नहीं होगा कि आप बिना माला किए रह सकते हो। तो एक प्रभु जी बता रहे थे कि जगत में जगत ऐसी माया है और जीव एक जंतु जैसा है, एक जो माया है बड़े झाल जैसी है, जैसे कोई झाल बना ले वेब नेट, और इसमें जीव एक छोटा सा जंतु है जो कभी भी फंस सकता है माया के जाल में। लेकिन अगर ये इस जो हरि नाम का अस्त्र ले ले, इस हरि नाम का सहारा ले ले, तो इस जाल से बच सकता है, नहीं तो मुश्किल है। तो ये हरि नाम ऐसी चीज है जो अनेक मुश्किलों से बचाता है। तो हम सवेरे सवेरे रोज जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि सिर्फ इस हरि नाम के जप से आप सब मुश्किलों से बच जाओगे, आपके अनेक विचार अंदर आएंगे, प्रलोभन आएंगे, लेकिन होली नाम का जप करते रहने से ये सारी चीजें मन से आएगी लेकिन निकल जाएगी। तो इसलिए रोज सवेरे जो श्री प्रभुपाद ने जो हमारे मूवमेंट बनाया है, रोज हम गीता भागवत पढ़ते हैं, चाहे हम क्वालिफाइड हो या अनक्वालिफाइड, तो ये शास्त्र हमें बार बार याद दिलाते हैं और बार बार हम बच जाते हैं। तो हम कई बार गलतियां भी करें, कुछ जो हमारे भक्ति के ये नहीं है, तो भी उन गलतियों को जैसे प्रभुपाद पुस्तक हम पढ़ेंगे तो हम फिर से याद आएगा और फिर हम बच जाएंगे। लेकिन इसके कोई विपरीत पर्याय नहीं है कि अभी हम आज नहीं कर पाए या सवेरे नहीं उठ पाए तो कल से फिर से शुरुआत करना है, उसका उस चीज का उत्साह उतना ही हमें बनाए रखना है। तो बार बार पुस्तक पढ़ने से श्री प्रभुपाद हमें बार बार याद दिलाते हैं कि बाहर कोई पर्याय नहीं है भौतिक जगत में, आप कितने ही ऑप्शन सोच लो वो कोई काम आने वाले नहीं है, क्योंकि ये जो सुख की प्राप्ति है हर योनि में है। श्री प्रहलाद महाराज भी इसी बात को खुद भी बोले हैं सातवें स्कंद में छठे अध्याय में, यथा ही पुरुषेश्य विष्णु पादो स अर्पणम यदेव सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वर सुरितः। उसके बाद बोले सुखम इंद्रियकम दैत्य देह योगिना देहिनाम सर्वत्र लभ्यते देवात यथा दुखम अयत्ततः। प्रहलाद महाराज कंटिन्यूड, माय डियर फ्रेंड्स बोर्न ऑफ डिमोनिक फैमिली, द हैप्पीनेस परसीव विथ रेफरेंस इन द सेंस ऑब्जेक्ट्स बाय कॉन्टेक्ट विद द बॉडी कैन बी ऑब्टेन इन एनी फॉर्म ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू वन पास फ्रूटिव एक्टिविटी, सच हैप्पीनेस इज ऑटोमेटिकली ऑब्टेन विदाउट एंडेवियर जस्ट एज वी ऑब्टेन डिस्ट्रेस। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ये जो सुख और दुख की प्राप्ति ये हर योनि में है, ऐसे नहीं कि मनुष्य योनि में ही है, या हर योनि, जानवर योनि या पशु या देवता या किसी योनि में आप व्यक्ति जब चला जाए तो ये सुख दुख अपने आप प्राप्त हो जाएंगे, इसके लिए विशेष प्रयास क्यों करना है, ये प्राप्त हो ही जाते हैं। लेकिन एक चीज है जो मनुष्य जन्म में ही हम कर सकते हैं और दूसरे योनि में नहीं हो सकती। पशु ये नहीं सोच सकता है कि मेरे लिए क्या सही है, क्योंकि उसकी जो चेतना है उसी में होती है, वो हर चीज सूंघ सूंघ के ढूंढता है कि खाना कहाँ मिलेगा और मजा कहाँ मिलेगा। लेकिन मनुष्य योनि में जीव को जो बुद्धि दी गई है उसमें उसे डिस्क्रिमिनेशन सोचता है क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में मनुष्य ही ऐसा है जो सोच रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कितने जानवर या पशु मिलकर सोचे कि देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए कि कैसे हम अच्छे से रहे, कोई पशुओं की मीटिंग नहीं हुई इस विषय पे कि हम लोग सोचे कि हम लोग सारे पशुओं का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हो, हमारे लिए ब्रिज बनाए जाए या हमारे लिए भी आईफोन होने चाहिए, ऐसे पशु लोग मीटिंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो इस बात को सोच ही नहीं रहे, सोच नहीं सकते, उनकी चेतना उतनी है। लेकिन मनुष्य की चेतना उच्च है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं, अगर मनुष्य इस चेतनाओं को उपयोग नहीं करेगा तो वो भी पशु कहलाएगा। तो इसमें प्रभुपाद जी भी बता रहे सातवें अध्याय में भी कि जो श्री भगवान की चरण कमलों की शरण ग्रहण करने से मनुष्य प्रकृति के कठोर नियमों को लांघ सकता है। यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि तो फिर विद्वान, दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यापारी, शासक तथा जनता के नेता सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण क्यों नहीं ग्रहण करते? बड़े बड़े जन नेता विभिन्न विधियों के विभिन्न योजनाओं को बनाकर उत्पन्न धैर्य पूर्वक जन्म जन्मांतर तथा प्रकृति के नियमों से मुक्ति की खोज करते हैं। तो कोई पूछे कि सब लोग फिर भगवान के शरण में क्यों नहीं आते हैं? अगर भगवान के शरण ही एकमात्र उपाय है तो क्यों नहीं आते हैं? तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि वो लोग क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि वो लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं। वे जो कठिन श्रम करने वाले भारवाही पशुओं की भांति निपट मूर्ख होते हैं, वे अपने श्रम का लाभ स्वयं उठाना चाहते हैं, अतः वे भगवान को उसे अर्पित करना नहीं चाहते। भारवाही पशु का उपयुक्त उदाहरण गधा है। उस पशु ने उसका स्वामी अत्यधिक कार्य लेता है। गधा ये नहीं जानता है कि वह अहर्निश किसके लिए काम करता है। तो प्रभुपाद जी बता रहे कि ये जो लोग है वो गधे जैसे मेहनत करके वो सोचते मैंने किया, वो अपने पे क्रेडिट लेना चाहते हैं, भगवान को नहीं देना चाहते हैं। वो भगवान को दे देंगे तो उनका महात्मा कम हो जाएगा। कई बार लोग कहते हैं कि मेहनत करो, खुद कुछ करके दिखाओ, लेकिन उसे पता नहीं कि पूरा जो जगत है वो भगवान के द्वारा ही नियंत्रित है। हम खुद कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे प्रभुपाद जी बताया कि जो जीव है खाली उस मशीन पे बैठता है, लेकिन वो भगवान जीव की इच्छाओं के द्वारा उस व्यक्ति को वैसा घुमाते हैं। तो इसी प्रकार 11वें स्कंद में भी नव योगेंद्र की जो कथा आती है उसमें कहा गया कि जो शरीर है, मानव शरीर है, वो किस लिए दिया गया है? ना देह माध्य सुलभ सुदुर्लभम प्लव सुकल्प गुरु कवेदम माया अनुकूले ना भास्व देता पुमान भावाब्द न तरेत आत्महा। द ह्यूमन बॉडी विच कैन अवॉर्ड ऑल बेनिफिट इन लाइफ इज ऑटोमेटिकली ऑब्टेन बाय द लॉज ऑफ नेचर ऑल्दो इट इज वेरी रेयर अचीवमेंट दिस ह्यूमन बॉडी कैन बी कंपेयर टू परफेक्ट कंस्ट्रक्टेड बोट हैविंग द स्पिरिचुअल मास्टर एज द कैप्टन एंड द इंस्ट्रक्शन ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड एज फेवरेबल विंड्स इम्पेलिंग इट ऑन इट्स कोर्स। कंसिडरिंग ऑल दिस एडवांटेज A human being who does not utilize his human life to cross the ocean of material existence must be considered the killer of his own soul. तो ये जो मानव शरीर है ये प्राप्त किस लिए है? इस भव सागर को पार करने के लिए, नहीं कि गधे जैसे मेहनत करने के लिए। तो जो भव सागर को प्राप्त पार करना है तो इसलिए एक आवश्यकता है एक आध्यात्मिक गुरु, एक ऐसे बोनोफाइड गुरु की, किसी बोगस गुरु की नहीं, जो आपको फिर इन्हीं चक्करों में फंसाए। कहीं पूरी दुनिया में कहीं लोग आध्यात्मिकता सिखा रहे हैं, कहीं लोग स्पेस सिखा रहे हैं, लेकिन कहीं जगह आपको फंसे हुए को और फंसाया जाता है। वो ऐसे ही उसकी कहीं इच्छा है, उसको बोले आ जाओ तुम ये करो तुम पे कृपा आ जाएगी, वो करो ये हो जाएगा, लाल पहनो, पीला पहनो, जींस पहनो, कल गाड़ी में आ जाओ, उल्टे सीधे उपाय बता के लोगों को मिसगाइड किया जाता है और फंसे हुए को और फंसा रहे। ऑलरेडी व्यक्ति कर्म बंधन में फंसा है और उसे लालच दी जाती है, अनेक प्रकार के प्रलोभन ऑलरेडी चारों तरफ से हो रहे हैं पूरे समाज में, चाहे आप कहीं पे भी चले जाओ। और उसके अलावा ऐसे लोग फैले हुए जो लोग और फंसाए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में हम सभी का बड़ा भाग्य है कि जहाँ पे श्री प्रभुपाद जैसे आचार्य आए और उन्होंने हमें ज्ञान दिया है, जो सच्चा ज्ञान जो गीता, भागवत और अनेक शास्त्रों के से प्रमाणित होता है, जिन्होंने एक ही चीज सिखाई, भगवान कृष्ण की भक्ति, और कोई प्रलोभन नहीं दिया, यहाँ आ जाओ ये मिल जाएगा, कोई बात नहीं तुम पे कृपा हो जाएगी, तुम्हारा सॉल हो जाएगा, ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, ऐसे कोई प्रकार के प्रलोभन नहीं दिए। उल्टा खुलेआम बोले कि फॉलो द फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल। और उन लोगों को जिनके पास सारी अभिलाषाएं है उन्हें सिखाया अन्य अभिलाषिता शून्यम। जिनके पास सारी इच्छाएं है, धनम जनम सारी सुंदरीम, उन सभी इच्छाओं वालों को प्रभुपाद ने सिखाया कि एक ही इच्छा करो। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, तो जब ये बार बार हम सुनते हैं तो हमारा मन भी कई बार भटकने से बच जाता है कि प्रभुपाद जी बार बार फिर से फोकस कराते हैं। जिसे जिस तरह से घोड़े के आंख पे कुछ लगाते हो, क्या बोलते हैं उसको, और रैंडर, तो यहाँ वहां नहीं देख पाता, उसका फोकस सीधा उसके मार्ग पे होता है। तो उसी तरह श्री प्रभुपाद जी ने हमें एक ही फोकस दिया है, श्री श्री राधा राज बिहारी का, और कोई फोकस नहीं, यहाँ वहां देखने का नहीं, बस एक ही जगह देखना है, भगवान की शरण लेना है बस। जैसे यहाँ वहां भटक गए, आप तुरंत कोई पुस्तक पढ़ लो, कोई भी पेज खोल लो, आपको तुरंत सॉल्यूशन मिल जाएगा। और रोज इस तरह से हम बचे रहते हैं, अपना ध्यान, चाहे कितने प्रलोभन आए लेकिन जब पुस्तक खोलेंगे, प्रभुपाद की इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे और उसे फॉलो करेंगे तो हमारा भी ध्यान उसी तरफ फोकस रहेगा। और इस मानव शरीर या मानव जो देह मिला उसकी सफलता हमें प्राप्त होगी, नहीं तो अनेक प्रलोभन में फंसे रहेंगे और फिर से वही वही खानदानी बिजनेस करते रहेंगे जो हमारे पूर्वजों ने किया, हम भी वही करते रहेंगे और फिर आते रहेंगे, अनेक योनियां प्राप्त होगी, अनेक मशीनों पे हम बैठ चुके हैं, अब और मशीनों पे नहीं बैठना है, ये प्रभुपाद जी हमें बार बार बता रहे हैं। और इन चीजों को अगर हम ध्यान दें तो हमें हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। हरे कृष्णा। तो समय हो चुका है श्री प्रभुपाद की श्रीमद् भागवतम ग्रंथ की। हरे कृष्णा।